ओम शांति। हमारा होमवर्क है, उसमें प्रश्न उत्तर का था और मुरली थी 18 मार्च 1981। उसका प्रश्न था कौन सा वेट वजन मतलब कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, कौन सा वेट कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। तो आत्मा के ऊपर वेट है, जैसे शरीर पर वेट होता है, तो वेट कम करने के लिए लोग भी कहते हैं और हम भी चाहते हैं। उसी रीति से जब ही हम आत्मा परमधाम में थी, तो परमधाम में या कलयुग के अंतिम समय में संगम युग में बाबा हमें मिला और बाबा ने हमें हल्का बना करके सभी बातों से मुक्त करके अपने सात पलकों पर बिठा करके बाबा परमधाम में ले गए। तो परमधाम में हम सभी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी, कोई भी प्रकार का बोझ वहाँ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम जब इस सृष्टि चक्र में आए, संसार में आए, और हमारा आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ था वो पार्ट प्ले करने के लिए इस संसार में हम आए, तो धीरे धीरे हमारे पर वेट बढ़ता गया। और कौन सा वेट बढ़ता गया? हमने शरीर में आकर के क्या क्या किया? शरीर में आकर के पहले आत्मा जो है वो मन बुद्धि संस्कार की तो है ही, लेकिन मन में क्या होता है? संकल्प आता है, विचार आता है। तो शुद्ध विचार होता है जिससे आत्मा हल्की बनती है। और धीरे 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 हम संसार में आते आते हमारे कर्म के हिसाब किताब में आते आते अभी हम अंतिम जन्म में हमारे ऊपर आत्मा के ऊपर बोझ बहुत बढ़ गया है। और वो बोझ है कैसे हमने बोझ किया? सबसे पहले संकल्पों से, फिर वाणी से और कर्मों से हमारा बोझ बढ़ता गया। और हम यहाँ कलयुग के अंतिम समय में बोझिल बन गए जो ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अभी हमारी बैटरी फुल डिस्चार्ज होने आई है तो बाबा ऊपर से आया, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब हल्की होती है तो उसको कहीं भी जाना होता है तो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जब भारी बन जाती है तो उसको उठना बैठना बहुत ही भारी पड़ता है। लेकिन अगर उसको महसूस हो जाता है तो फिर महसूस होने के बाद लोग भी उसको महसूस कराते हैं, महसूस कराने के बाद अगर वो विधि अनुसार चलते हैं तो हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ आत्मा के ऊपर बहुत ही भारी बोझ है और वो हल्का करने के लिए इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन हल्का नहीं कर सकती है। और वो काम है किसका? काम है बाबा का काम है। और बाबा जब भी इस धरा पर आता है तो हमें हर प्रकार की समझानी देता है। तो वेस्ट जो होता है, वेस्ट का वेट बहुत है हमारे पर, ना? तो वेट जो है वो बढ़ता ही चला जाता है तो क्या होता है? हमारी बैटरी खत्म होने आती है। तो सबसे पहला W है। W माना कि सारे यहाँ हम जब भी काम करते, सुबह से उठते हैं तो मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सारे दिन में फिर क्या होता है? हमने बैटरी तो थोड़ी थोड़ी चार्ज कर ली अमृत वेले, लेकिन सारे दिन में W माना Y मतलब क्या क्यों करते हैं, व्हाट व्हेन वेयर होम, उसमें हम रहते हैं। तो हमारी बैटरी जो भरी हुई होती है उसमें से क्या होता है, जो हम संकल्प करते हैं, कोई भी बात हमारे सामने आती है तो हमारा क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों है, हमारी साथ ही ऐसा क्यों होता है, या जो भी दुनिया में जो भी परिस्थिति बाहर की आती है या वहाँ की आती कहाँ, लेकिन प्रश्न होता है क्यों ऐसा? और वो प्रश्न क्यों होता है? क्योंकि इस जन्म जन्मांतर में जो हमने हिसाब किताब बनाए हैं और हमने संकल्पों से सब कुछ किया है, तो वो हम इतना जल्दी साफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको बाबा का ज्ञान मिला है, तो बाबा का ज्ञान में हमको एक बहुत अच्छी पॉइंट्स मिली है, और ड्रामा। क्यों? क्योंकि अगर ड्रामा ही नहीं होता ना, तो आधे ब्राह्मण तो मर जाते। क्योंकि कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है, ऐसी आती है, और वो परिस्थिति में अगर ड्रामा बाबा ने हमको याद कराया है कि ये ड्रामा ऐसा है, कल्याणकारी है, ये हमारा ही किया हुआ कर्म का हिसाब किताब का ही है, तो धीरे धीरे हम समझने लगते हैं, तो हमारे पर थोड़ा थोड़ा बोझ हल्का होता है। तो ड्रामा। दूसरा है कि कोई भी बात में हमें जाना ही नहीं होता है, तो भी व्यर्थ की बातों में हम बहुत जाते हैं। हमारे जीवन में नेगेटिव तो नहीं है अभी, लेकिन वेस्ट तो होता है। सारे दिन में आप देखो कितना वेस्ट का बोझ होता है। सारे दिन में हम जब कर्म करते हैं तो हजारे बातें आती है, जिसमें हमको अंदर से, हम भले बाहर से नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर से हमको होता है। क्योंकि ये शांति स्तंभ पर जो होता है ना, तो सभी आते हैं ना, तो कोई चप्पल पहन करके चला गया ना, तो हजारों का संकल्प चलता है कि देखो चप्पल पहन के जा रहा है, और उसको सारे मिलकर के बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातों के पर भी बहुत संकल्प चलता है। तो अभी देखो ये ड्रामा एक्यूरेट है, वो किसी ने देखा उसके निकाला दोबारा, लेकिन वो हमारे अंदर छाप पड़ जाती है। फिर हम जब भी शांति स्तंभ पर आते हैं तो हमको याद आता है, देखो ये चप्पल पहन के जाते हैं लोग, तो इस प्रकार का संकल्प चलता है। तो हमारे जो ड्रामा का ऐसा हमको ज्ञान मिला है, जिसमें बाबा ने कहा कि ड्रामा कैसा है, हुबहू रिपीट होता है। आज मुरली में बाबा ने बोला हुबहू रिपीट होता है, जरा भी चेंज नहीं हो जाता है। और वो हमें ये ज्ञान संगम युग में ही मिलता है, अभी ही मिलता है, बाकी इतने युगों में हमें ज्ञान नहीं मिला है। तो हम है ना, जब भी एक जगह पे क्लास कराने जाते थे, तो वो भाई था ना, तो ये बन गया था और बहुत ही सबको ज्ञान भी देता था। प्रदर्शनी मेला होता है, उसमें सबसे आगे आता था, लेकिन उसको एक बात बहुत ही तकलीफ देती थी, ड्रामा रिपीट होता है। तो मैंने जो कलाई का काम है ना वो करता था, तो उसको अंदर से लगा 5000 वर्ष के बाद फिर से मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो वो जो ड्रामा तो बहन समझाती थी कि देखो अच्छा अच्छा भी है ना, आप देखो कितना अच्छे बन गए हैं, अभी आपको ये काम भी छूट गया है, अभी आपकी आमदनी भी बहुत बढ़ गई, आप दूसरा भी धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप कि नहीं 15 साल तक मैंने ये काम किया, तो भी फिर से मुझे करना पड़ेगा। तो मतलब कि ड्रामा को अच्छी रीति समझना है कि आगे हम देखो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, तो ड्रामा को अच्छी रीति समझेंगे कि कल्याणकारी हमारा ही हिसाब किताब है, किसी का नहीं है। तो जब ड्रामा को संपूर्ण रीति से समझते हैं कि कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है, तो अभी हमारा अगली जो सेकंड है उसको हम सुधार सकते हैं। क्योंकि ड्रामा हमारे हाथ में है, कैसे है, क्योंकि अभी बाहर जाना है तो कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना वो हमारे हाथ में है, तो भाग्य बना सकते हैं। तो वो जो वाई जो क्वेश्चन आता है कि जो हर प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन से पार होने के लिए ड्रामा को एक्यूरेट हमें रोज ही रोज अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है कि ई माना इसी नेचर। इसी नेचर हो तो क्या होगा कि कोई भी कोई व्यक्ति को आपने देखा बहुत इजी नेचर होते हैं, उसको मिलने में भी बहुत अच्छा होता है, उसके पास क्वेश्चन नहीं होते इतने, और हम किसी के पास बैठते हैं तो हमको कहाँ से आए, क्या हुआ, कहाँ जाते हैं, सब प्रकार के क्वेश्चन बहुत होते हैं। हाँ, तो मतलब कि कोई भी प्रश्न नहीं, कोई भी क्वेश्चन जिसके पास नहीं होता है, और कोई के पास तो इतने क्वेश्चन होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में इतना उलझा जाते हमको लगता है इसके पास कभी जाना नहीं है, ऐसा मतलब इतना क्वेश्चन पूछेंगे जिसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन ये चिमन भाई है उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बहन को जाना था, तो उसने बोला कि अभी मुझे नहीं जाना है, लेकिन दूसरी बार हमने फिर से पूछा कि वो कल ऐसा प्रोग्राम बन सकता है, बोला हाँ। उसने प्रश्न नहीं किया कि नहीं नहीं आपने तो कल क्या बोला था, अभी क्या बोल रहे हो, ये सब नहीं बोला। तो इजी नेचर होता है ना, बहुत ही ज्ञान मार्ग में बहुत ही काम आता है, और संसार में भी इजी नेचर से ही लोग इजी बन जाते हैं और हम इजी बनाते हैं उसको, भारी नहीं बनाते। तो इसी नेचर के लिए क्या चाहिए आपको? बाबा का जो ज्ञान है उसको नथिंग न्यू, आप भाई साहब ने भी बोला नथिंग न्यू, माना कि जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, नथिंग न्यू है, बहुत बार किया है, बहुत बार हो गया है, इसलिए अभी हमें उसके बारे में बहुत नहीं सोचना है। दूसरा है कि साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर कैसे देखेंगे? साक्षी होकर देखने के लिए हम एक स्टेज जो है, जो ड्रामा होता है उसमें हम जब कोई भी ड्रामा देखने जाते हैं तो एक तरफ बैठ करके देखते हैं, है ना, उसी रीति साक्षी बन करके देखते। तो ये भी जैसे हम बैठे हैं यहाँ तो हमको अपने एक तरफ जैसे खड़े होकर के हमको इन्वॉल्व करके देखना है कि हम क्या क्या करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। रोज की प्रैक्टिस अगर हम करते हैं साक्षी बन करके देखने का, तो ये अभ्यास जब भी बहुत ऐसी परिस्थिति आती तभी बहुत ही काम में आता है। जैसे कोई व्यक्ति का, बहुत ही नजदीक का व्यक्ति मर जाता है, तो उसने अभ्यास किया हुआ है कि आत्मा है वो शरीर छोड़ती, बहुत बार अभ्यास किया है, तो पहली बार जब भी उसको बोलते हैं ना कि भाई देखो ये ऐसा अभ्यास करो, तो उसको अंदर से रोना आता है कि मेरी बहुत नजदीक की व्यक्ति है, मैं ऐसे कैसे अभ्यास करूं। लेकिन बहुत बार अभ्यास करने से फिर वो फीलिंग से प्रूफ हो जाते हैं। तो मतलब साक्षी होकर देखने का, हर चीज, हर चीज जब साक्षी होकर देखने का अभ्यास हो जाता है तो हमें फिर उसमें क्यों क्या क्वेश्चन नहीं होता है। दूसरा है कि आई, आई माना, आई का दो अर्थ भी होता है। आई माना कि देहाभिमान का आई है, है ना, तो जहां भी देखो वहां हमको, जैसे हम मधुबन में रहते हैं तो कभी कभी हम कहीं भी जाते हैं तो सबको कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नंबर आगे होना चाहिए, अंदर से होता है, तो ये नहीं होना चाहिए ना, हम सभी एक ही है, वो हम भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आई बहुत ही हमको इस ज्ञान मार्ग में, आई हमारा बहुत बड़े से बड़ा दुश्मन है, क्योंकि देहाभिमान का, देहाभिमान है उसमें कि मेरा मान हो, मेरा शान हो। जब भी ओम शांति भवन में जब भी सोफे पर बैठते हैं तो बहुत सारे बैठ जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बहन आती है तो उसके लिए कोई जगह छोड़ दे, कोई नहीं छोड़ते हैं, तो उसको लगता है देखो कोई जगह ही नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि छोटी छोटा, बाबा ने कहा कि इतना हमारे में रग रग में देहाभिमान भरा हुआ है, तभी तो बाबा को आत्माभिमान बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और ब्रह्मा बाबा ने भी कितनी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है ना, तो इतनी मेहनत हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा आई है कि अंतर्मुखता, अंतर्मुखता में जब रहते हैं तो शांति में रहते हैं तो हमारी जो भी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, मुंह है, बाबा ने कहा आंखें बहुत धोखा देती है, इतनी धोखा देती है कि हम कुछ भी किसी को देख लेते हैं तुरंत ही संकल्प चलना शुरू होता है। तो हमारे पास दो दरवाजे ऐसे हैं, एक आंख और एक कान, उसमें से जाता रहता जाता रहता है, और फिर जब भर जाता है तभी यहां से शुरू होता है बोलना। तो आंखें बहुत धोखा देती है, कान को तो आप बंद कर सकते हैं, आंखों को भी बंद कर नहीं सकते हैं ना, लेकिन आंखें ऐसी है। तो हम एक बार है ना रक्षाबंधन के समय में जब साधु सन्यासी को मिलने गए थे तो वह एक साधु था, उसका नाम आप भूल गई हूँ, नहीं वो अभिमान था कि ऐसा कुछ नाम था। तो हमने बोला कि आप, हम जब गए तो उसने आंखें खोली, देखा हमको, तो हमारे को अंदर से ऐसा हुआ कि ये तो हमको बोला था कि वो आंखें बंद ही रखता है, मतलब खोलता नहीं है, बस आंखें बंद रखता है। तो हमने बोला कि आप आज आपने आंखें क्यों खोली? तो उसने बताया कि देखो बहन जी, हम है ना आंखें इसलिए बंद करते हैं कि जो भी अंदर कचरा जाता है ना आंखों से बहुत जाता है, ऐसे भी आंखों से जाता है ना, लेकिन क्यों? क्योंकि जो भी देखा हमने तुरंत ही संकल्प चलना शुरू करते हैं। आप सुबह में उठ करके देखो, जितना देखोगे ना वहां वहां हमारे संकल्प चलता ही रहता है। यहां भी कोई कितने भी लोग आते हैं तो हमारा संकल्प चलता है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, वहां बहुत आवाज करते हैं और हम देखते हैं क्या कौन कौन है, तो हमको लगता है कोई कैसी व्यक्ति आती कैसी व्यक्ति है, तो हम देखते हैं हमारा संकल्प चलने लगता है। तो हमने जो बैटरी भरते हैं ना सुबह में योग में जब बैठते हैं तो बैटरी भरते, तो आधी बैटरी तो वैसे ही खाली हो जाती है, होती है नहीं होती, तो इसलिए अंतर्मुख, अंतर्मुख माना सिर्फ मुख का मौन नहीं, लेकिन हम मन से भी मौन रखें। कैसे रखेंगे मन का मौन? हो सकता है, क्योंकि वो तो देखो बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर तो है ही ना, बिना शरीर का तो नहीं होता है, और जैसे बड़ा बड़ा होता है तो शरीर भी बड़ा होता है। ऐसे हम आए हैं तो संकल्प तो चलेगा, संकल्प बंद हो जाना हो तो मर जाना है। तो शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प चलता है, और उसका आधार क्या है? उसका आधार है कि हम जितना अंतर्मुख रहेंगे, और अंतर्मुख का आधार क्या है कि हमको एक अच्छा पढ़ना, मनन करना। तो बाबा ने इतना खजाना दिया है, कितना खजाना दिया है, एक तो रोज रोज मुरली हो उसमें कितना खजाना होता है, और उसके बाद भी अभी तो लिटरेचर में इतनी सारी चीजें हैं, जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक मिल जाता है रेडीमेड, और इतना सारे लोगों का अनुभव है, इतने दादियों का अनुभव है, इतना दादाओं का अनुभव है, और हमारे साथ साथ जो भी चले हैं उनका भी, हर एक व्यक्ति का बाबा का मिलने का अनुभव, उसका बहुत सारा अनुभव होता है। तो कम से कम हम मुरली को रोज बराबर पढ़ते हैं और उसको मनन करते हैं, और फिर दादियों का अनुभव है, बड़ों का अनुभव है, वो सुनते हैं। हमने है ना, एक बार हम नए नए आए थे यहाँ मधुबन में, नए मन से ऐसे तो हम कैन में चलते थे, लेकिन हमको एक बार क्लास दे दिया, तो हमने बोला हम नहीं कराएंगे, तो हमको बोला कि नहीं नहीं आपको कराना ही पड़ेगा। तो हमने सूरज भाई का क्लास हमने बहुत बार सुना था, तो हमने वो थोड़ा रेडी कर लिया और फिर सुनाया। तो उस समय है ना, तो जगदीश भाई जी है ना, वो ये कैसेट डिपार्टमेंट है ना, उसमें बैठता था, सबका क्लास सुनता था। तो जैसे ही हम नीचे आए ना, तो हमको बोला इधर आओ। हमने बोला आपने क्या सुनाया? मैंने बोला कि भाई भाई साहब, आप तो इतना सारे पुस्तक लिखे हैं, तो आपका और हमारे कहाँ क्या कंपेरिजन होंगी? तो नहीं 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 बताओ बताओ। तो हमने बताया कि ये हमने किया। तो बोला, मैंने बोला आप तो देखो कितनी लिटरेचर लिखते हो और कितनी क्लासेस कराते हो और कितनी बुक्स है आपके पास। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोला देखो इस मधुबन में जो भी ब्राह्मण बच्चे बनते हैं बहुत विशेष है, आपको पता नहीं कौन कहाँ किसने कितनी सिद्धियां प्राप्त की हो, इतना 84 जन्म में कहाँ कहाँ वो लोग कैसे कैसे बने होंगे हमें थोड़ी पता है, लेकिन हम है ना यहाँ बैठ करके मैं सबका सुनता हूँ, सबका सुनता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। इतने भाई को पूछो एक भी कैसेट मैंने ये नहीं रखी एक मैं ना सुनी हो। मैं रोज उसको बोलता हूँ कि मेरे को सब कैसेट दो मैं सुनूं, और सुन करके ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सुनता हूँ तो मेरा विचार बहुत चलता है, विचार चलता है तो फिर लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला हमारा तो छोटा सा, बोला कोई भी हो, लेकिन बाबा ने बोला ऋषि मुनियों की सभा होती है यहाँ, और बहुत बड़े बड़े साधु संन्यासी के जो भी काम किया है और जितनी सिद्धियां प्राप्त की है, वो भक्ति मार्ग में जितनी सिद्धियां प्राप्त की यहाँ से ही है, बाहर तो है नहीं। बाहर के अभी जो भक्त है तो वो तो डुप्लीकेट है, मतलब कि है लेकिन देखो अभी कैसे कैसे उसका हाल है ना। तो सच्चे सच्चे जो भक्ति मार्ग वाले, जो भक्ति जिसने बहुत दिल से की है, वो तो यहाँ ही बैठे हैं। तो हमको ऐसा लगा कि भाई साहब हमको चढ़ा रहा है, मैंने बोला आप हमको ऐसा नहीं करो। तो कहो नहीं नहीं बहन जी, मैं सबका क्लास इस कोई भी क्लास मैंने मिस नहीं किया अब तक, भले मैं वहां नहीं जाता हूं लेकिन मैं सुनता जरूर हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो हमको अंतर्मुखी रहते हैं और मनन करना है तो हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा संग रखेंगे, अच्छी बातों को ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, तो हमें मनन करने में हमको मदद मिलेगी। नहीं तो हम मनन किसका करेंगे, जो यहाँ से मिला वहाँ से मिला, वो कचरे का मंथन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा। दूसरा है जी, जी माना गॉडली वर्सन्स महावाक्य। वो तो हमने बताया कि गॉडली वर्सन्स में तो कितनी ताकत है, बाबा एक जगह पर बैठ करके सारा दुनिया का परिवर्तन कर लेता है ना, वो कहीं नहीं जाता, एक ही सीट पर बैठता है, और एक सीट पर बैठ करके कितना, मतलब कि लोगों को पूरा स्वर्ग की स्थापना, पवित्रता की स्थापना, राजधानी की स्थापना कितना करता है, वो कहीं जाता नहीं है, एक ही जगह पर बैठ करके इतना सबकी मनोकामना, मतलब सब कुछ पूरा कर देता है। तो वो महावाक्य बाबा जो हमको बताते हैं उसका हम मनन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या होती है, धीरे धीरे क्लीन होती जाती है। और मुरली में भी एक बार पढ़ते हैं ना, तो हमने 15-20 साल पहले पढ़ी है, लेकिन वही मुरली आज हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि रतन दादी जी हमेशा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, आपने मुरली पढ़ी है क्या, हमने तो ये देखी, ऐसा लगता नहीं ही है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये तो रिपीट तो होती है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार ये ब्लॉकेज खुलेगा, है ना। अभी एक शब्द में आपको समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ोगे ना तो वो क्लियर होता जाएगा। तो जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार हमारा जो मुरली ही जादू है, क्यों जादू है, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमारा ये मतलब कि लाइन खुलती जाती है। तो पहले जो हमको समझ में शुरुआत में जो आते हैं वो मुरली पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो मुरली पढ़ने में क्या है, लेकिन समझने में जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार समझ ज्यादा आ जाती है। और दूसरा है एच, है ना, एच माना हॉनेस्टी, ईमानदारी, वफादारी। किसको ईमानदार, किसको वफादार रहेंगे हम, किसको वफादार रहेंगे, जो जिस बाबा ने हमको जीवन दिया है, है ना। तो हम ईमानदार रहेंगे किसके प्रति, ईमानदार जो हमको बाबा ने समझ दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो हमें धारणाएं सिखाई है, जो श्रीमत दिया है, अगर हमको ईमानदारी से उस पर चलते रहेंगे। तो बाबा ने बोला कि माया तो आएगी, विघ्न तो डालेगी, लेकिन विघ्न आता है क्यों, मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर किसी की एग्जाम ही ना हो तो उसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है क्यों, क्योंकि विघ्न आता है, इस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमको जो भी, हम जहां भी रहते हैं वहां हम एक तो बाबा को वफादार रहे, ईमानदार रहे, लेकिन जिसके साथ रहते हैं उसको भी हम वफादारी ईमानदार रहे, और ईश्वरीय परिवार, जो ईश्वरीय परिवार है उसमें भी हम जितना ईमानदार रहेंगे, जितना वफादार रहेंगे उतना क्या होगा, विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। और विश्वास प्राप्त करना सहज बात नहीं है, तोड़ना तो एक सेकंड की बात है, लेकिन विश्वास को, हम किसी का विश्वास को जीतना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उसको जीतने के लिए बहुत लंबी मंजिल है। क्या मंजिल है, कि वो मंजिल ऐसी है कि बाबा जो हमको कहता है, बाबा को वफादार रहेंगे, बाबा के साथ ईमानदारी होंगी तो सबके साथ हमारी ईमानदारी होगी। दूसरा है, लास्ट है, वो तो बहुत बड़ी बात है, टॉलरेंस। टॉलरेंस माना सहन शक्ति। वो देखो सहज घर में भी और बाहर भी या कहीं भी जाते हैं। एक छोटा बच्चा है ना, जब स्कूल में जाता है तो उसको उस समय ऐसा लगता है जैसे अमेरिका की टूर करनी है। उसको घर से बाहर जाना है तो कितना उसको घर से भी संभालते हैं, माँ बाप भी संभालते हैं कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। और बच्चा जाता है फिर वहाँ धक्के धुक्की होती है, तो उसके लिए भी तो वो कितनी बड़ी बात है। कई बच्चे तो दो चार बार होते हैं तो नहीं जाते हैं, तो माता पिता उसको छोड़ने जाते हैं, और धीरे धीरे उसमें सहन शक्ति आती है। सहन शक्ति का बहुत ही प्रयोग हमारे जीवन में होता है ना। जब बड़े कहीं आप सेवा में जाते हो, सेवा में जाते हो वहां तो ठीक है, लेकिन सर्विस पे जाते, जॉब पे जाते, पहली बार जाते हो, कितना सहन करना पड़ता है, न्याय अन्याय, झूठ कपट, सब कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा हमें मिला है, इसलिए हम जो भी सहन करेंगे तो क्या बनेंगे, किसकी श्रीमत है सहन करने की, किसके, शिव बाबा कहते हैं सहन करोगे तो सहनशाह बनोगे। तो ऐसा भी नहीं कि बस सहन करते ही चलो, करते ही चलो, करते ही चलो, बाबा की श्रीमत भी है वहां, और श्रीमत का प्रयोग करके हमें सहन करना है। दूसरा है कि जब सहन करने की बात आती है तभी उसमें परक शक्ति भी चाहिए ना। कोई हमको कहता है कुछ बहुत ही हमारे पर डोमिनेट करता है, करता ही रहे हम सहन करते ही रहे, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन परक शक्ति भी हो। और परक शक्ति कैसे मिलती है, जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा से परख शक्ति मिलती है, निर्णय शक्ति मिलती है। तो सही क्या है, गलत क्या है, वो बाबा की श्रीमत हमको मिलती रहती है, और जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करते हैं तो बाबा ने आज भी बोला कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कौन है, जो पद्मा पदम 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 सेकंड सेकंड मुझे याद करते हैं, बहुत बड़ा पद्मा पदम पति बनता है। तो सुबह में उठते हैं तो रात को हम सोते हैं तब तक हम जो भी मतलब कि पुरुषार्थ करते हैं, कई बार बहुत योग हमारा हो जाता है, जैसे सुबह में उठे, योग किया, फिर जहां भी टाइम मिला योग किया, तो हमको अंदर से ऐसा लगता है आज तो हमारा कोटा पूरा हो गया, है ना। लेकिन कितना लीकेज जाता है वो तो हम गिनती करते ही नहीं है, लीकेज ज्यादा हो जाता है और वो कम होता है। इसलिए हमारी बैटरी कैसी होती है, भरते हैं और उसमें चला जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बैटरी भरने के लिए क्या चाहिए कि बाबा को रोज रोज हम इतना मनन करने की बहुत बात है, क्योंकि जितना जितना मनन करेंगे तो ज्ञान अपना बन जाएगा। अभी बाबा ने 2 दिन पहले एक मुरली चलाई थी, उसमें बताया था कि ये जो अभी है ना ईश्वरीय परिवार है ना उसमें अभी हमें मालूम पड़ा कि हमको 21 जन्म तो क्या 84 जन्म तक यही मिलेंगे, अलग अलग रूप में मिलेंगे। तो विचार करो कि इतने जन्मों में ये जो हमारे सामने बैठे वो भी तो हमारे साथ भी तो घर में कभी कभी होंगे कि नहीं होंगे हैं? अभी वो जो जितने भी हमको मिलते हैं वो ऐसे नहीं मिले हैं हमको, हमारे साथ उसका रिश्ता होगा, सब कुछ होगा। और अभी हम जिस घर में रहते हैं उसकी कितनी परवरिश करते हैं, चाहे आपकी बच्ची हो चाहे कोई भी हो, कितनी परवरिश करते हैं, दूसरे की इतनी नहीं करते हैं। लेकिन बाबा ने हमको ईश्वरीय परिवार बनाया, ईश्वरीय परिवार माना कि जो भी हमको मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जैसे सर्विस में मिलते हैं, सेवा साथी में मिलते हैं, जहां सेवा करते हैं वहां जाते हैं, जहां ऑफिस में भी आप जाते हो जिसके साथ आपका बहुत संपर्क है, वो भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे ना, नहीं आएंगे, बाबा के झाड़ कैसा है, वृद्धि को पाता ही रहेगा। इसलिए जहां भी हम रहते हैं वो अगर हमको एक बात बुद्धि में आ जाती है कि ये हमारे परिवार के ही है, तो सभी के प्रति हमारा क्या होगा, सभी के प्रति सम्मान भी होगा, और सभी के प्रति, क्योंकि ये हमारा जो क्या हिसाब किताब है ना, हिसाब किताब के अनुसार हम जहां भी आते हैं मिलते हैं तो ये हमारा हिसाब किताब है, तो हम बहुत प्यार से स्वीकार करके जब हम समझ करके करते हैं तो क्या होता है, तो तुरंत ही सरल हम बन जाते हैं। क्योंकि आपको बताऊं, ये हमारे जो हम जहां सोते हैं ना, तो वहां खिड़की में इतना दोपहर में इतना आवाज आता, तो हम सोते हैं शांति से सो जाते हैं, मतलब कुछ आवाज हमको लगता नहीं है। लेकिन कोई कोई अगर आते हैं और कुछ थोड़ा भी प्लास्टिक ऐसा कर देंगे तो हम शांति से सोने दो ना, क्या होता है, मतलब क्यों, क्योंकि वो हमने स्वीकार किया है, ये हम स्वीकार नहीं करते। अभी घर की कोई व्यक्ति है ना जिसके साथ आपके बहुत प्यार है ना, उसकी कितना डिस्टर्बेंस आपको सहन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। लेकिन जो व्यक्ति के थोड़ा भी होता है, हमें हमको एक बहुत बड़ा कमरा मिला है समझो, लेकिन बाबा के घर में सेवा साथी में कमरा एक मिलता है, उसमें बहुत लोग होते हैं, तो किसी का क्या तो सहन नहीं कर सकते, कंप्लेन करते रहते, वही हमको ये कमरा चेंज करो, इसमें ऐसा हो ऐसा है। लेकिन समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे, अभी आपके घर की व्यक्ति को ऐसा होता तो ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। तो ज्ञान को जब मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये सब बातें हमारे सामने आती हैं कि कैसे हमको करना। सिर्फ ज्ञान का हम याद रखना है तो बहुत ही अच्छी बात, याद रखेंगे तो मनन मंथन भी होगा, लेकिन एक एक महावाक्य को अगर हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमको सुख मिलता है, बिगर अप्लाई करने तो सुख नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो, तुम सबको बाबा का जो ज्ञान मिलता है उसमें मनन मंथन करके उसकी अथॉरिटी बनना है। ओम शांति।